ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासाम् ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अवत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 16 टेक्स्ट नंबर 9. येषां बिभ्रम्याहमखंड वैकुंठ योगा माया विभूतिरमलांग्रि रज किरीटैः विप्रांस्तु को न विषहेत यत् अरहनाभम् सत्या पुणाति सह चंद्रललाम लोकां. ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय हिज लविंग डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद. ट्रांसलेशन. आई एम द मास्टर ऑफ माय अनऑब्स्ट्रक्टेड इंटरनल एनर्जी एंड द वाटर ऑफ गैंजेस इज remnant left after my feet are washed. That water sanctifies the three worlds along with Lord Shiva, who bears it on his head. If I can take the dust of the feet of the Vaishnava on my head, who will refuse to do the same? Hindi mein kare. पर पढ़ लेता इंग्लिश. द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनर्जीज ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ अ गॉड हेड इज दैट इन द इंटरनल एनर्जी और इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑल द ऑपलेंसेस आर अनडिस्टर्ब्ड, वेयर एज इन द एक्सटर्नल और मटेरियल एनर्जी ऑल द ऑपलेंसेस आर टेम्पररी मैनिफेस्टेशंस. The Lord's supremacy is equal in both the spiritual and material worlds. But the spiritual world is called the kingdom of God, and the material world is called the kingdom of Maya. Maya refers to that which is not actually fact. The opulence of the material world is a reflection. It is stated in Bhagavad Gita that this material world is just like a tree whose roots are up and branches are down. This means that the material world is a shadow of the spiritual world. Real opulence is in the spiritual world. In the spiritual world, the predominating deity is the Lord Himself. Whereas in the material world, there are many lords. That is the difference between the internal and external energy. The Lord says that although He is the predominating factor of the internal energy, and although material world is sanctified just by the water that has washed his feet, he has the greatest respect for the Brahmanas and the Vaishnavas. When the Lord himself offers so much respect to the Vaishnava and the Brahmana, how can one deny such a respect to such a personalities? Pani. ओम अज्ञानदिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। येषां विभ्रम्य अहम् अखंड वैकुंठ योग माया विभूतिर अमलांघरी रजक किरीटः किरीटैः विप्रांस्तु कोन विषहेत यद अर्हनाभम् सदया पुनाति सह चंद्र ललाम लोकान्। I am the master of my unobstructed internal energy, and the water of the Ganga is the remnant left after my feet are washed. That water sanctifies the three worlds along with Lord Shiva, who bears it on his head. If I can take the dust of the feet of the Vaishnava on my head, who will refuse to do the same? So here, तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है वैष्णवों की महत्ता के बारे में। पद्म पुराण में माता पार्वती जब शिव जी से पूछती है कि ऐसी कौन सी विधि है जो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है साधनाओं में या पूजाओं में, तो उस समय भगवान शिव जी कहते हैं कि आराधनाम ही सर्वेषां विष्णुर आराधनम परम तस्माद परतरम देवी तदियाणाम समर्चन। कि आराधनाम ही सर्वेशाम विष्णु और आराधना, सारी आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना अगर किसकी है तो है भगवान श्री विष्णु। तस्माद परतरम देवी तरतम यानी उससे भी श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ सर्वाधिक श्रेष्ठ कही गई है तदियाणाम समर्चनम जो भगवान के है उनकी पूजा करना उनकी आराधना करना ये उससे भी श्रेष्ठ माना गया। और वही प्रतिपादन यहाँ पे भगवान स्वयं कर रहे हैं कि येषा विभ्रम्य विभ्रमी अखंड वैकुंठ अहम अखंड वैकुंठ योगा ಮಾಯಾ ವಿಭೂತಿಭಿರಮಲಾಗ್ನಿ ರಜ ಕಿರೀಟೈಹಿ. ರಜ ಉನ್ಕೆ ಚರಣೋ ಕಿ ಧೂಲ್ ಮೈ ಅಪ್ನೆ ಮಸ್ತಕ್ ಪೆ ಧಾರಣ ಕರ್ ಲೇತಾ. ಸದಯಾ ಪುನಾತಿ ಸಹ ಚಂದ್ರ ಲಲೋಕ ವಿಪ್ರಾಂಸ್ತು ಕೋನ ವಿಷಹೇತ್ ಯದ ಅರ್ಹನಾಭ. जैसे भगवान के चरणों को धोया हुआ जल जो है वो है गंगा जी, और वो तीनों लोगों को पावन करते हुए आगे बढ़ती है. स्वर्ग लोक में अलकनंदा के नाम से जानी जाती है, भूलोक में भागीरथी के नाम से जानी जाती है, और पाताल लोक में मंदाकिनी के नाम से जाना. मंदाकिनी पाताल गंगा भी जिसको कहा. तो तीनों लोगों को पावन करने का सामर्थ्य गंगा जी के पास आता है क्योंकि वे भगवान के चरणों को धोके आती है, और उसी चरणों को भगवान शिव जी अपने मस्तक पे धारण कर लेते हैं, और वही जल है जिसके द्वारा हम भगवान के पूजाओं के जो सामग्री है उनको पवित्र करते हैं. ऐसे जल में स्नान करने के पश्चात व्यक्ति को पवित्रता प्राप्त होती है, यानी उस गंगा के जल के संपर्क में जब हम आते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारा शुद्धिकरण. लेकिन वैष्णवों में इतनी शक्ति है कि केवल उनके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति पावन हो जाता है. गंगार परश होले पश्चात पावन, गंगा का स्पर्श करने के पश्चात गंगा आपको पवित्र करती है. दर्शने पवित्र करो यही तो मार्ग. लेकिन वैष्णवों के दर्शन मात्र से ही जीव पवित्र बन जाता है, और इसलिए भगवान यहां पे कहते हैं कि अगर मैं ऐसे वैष्णवों के चरणों की धूल अपने मस्तक पे धारण कर सकता हूं तो फिर इस जगत में ऐसा कौन व्यक्ति है जो इसका आचरण नहीं करेगा, जो इस धूल को अपने मस्तक पे धारण नहीं करेगा, और जो नहीं करेगा उससे दुर्भाग्य व्यक्ति तो कोई है नहीं. महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि भक्तपद धूलि भक्तपद जल भक्त भुक्त अवशेष यही तीन महाबल. कि भक्तपद धूलि भगवान के भक्तों के चरणों की धूलि, भक्तपद जल भगवान के भक्तों के चरणों को धोया हुआ पानी, और भक्त भुक्त अवशेष और भगवान के भक्तों को अर्पण किया हुआ प्रसाद जिसको हम महा महा प्रसाद, वो वही प्राप्त होने के पश्चात जीव में इतनी आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है कि वो भगवान की सेवा में निरंतर लग सकता है. और इस महाप्रसाद का तो बहुत महिमा है, और इस महिमा को आप जान सकते हैं जब आप जगन्नाथपुरी जाते हैं, जगन्नाथपुरी यात्रा करते हैं. वहां जाने के पश्चात आपको मालूम पड़ेगा कि ये क्या महिमा है महाप्रसाद. चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर वर्णन करते हैं कि एक बार रमा वैकुंठ धाम में भगवान वैकुंठाधिपति नारायण भोग ग्रहण कर रहे होते हैं, और माता लक्ष्मी वहां पे उनको परोस रही होती, और उसी समय वहां पे देवर्षि नारद पहुंच जाते. और देवर्षि नारद पहुंचते हैं और प्रार्थना करते हैं, और वे चाहते हैं कि भगवान का महाप्रसाद उनको प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त हो. तो भगवान तो देखते नहीं है उनकी तरफ, भगवान अपना प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, अपना भोग ग्रहण कर लेते हैं. और नारद जी उच्छिष्ट प्राप्त करने की इच्छा से वहां पे खड़े रहते हैं। तो भगवान स्वयं तो नहीं देंगे अपना उच्छिष्ट, हाँ दे सकते हैं जब वो मित्र का भाव हो, देती भी और झूठा ले भी लेते, और वो ये केवल ब्रज में होता है, वृंदावन में होता है, वैकुंठ में नहीं होता है। वैकुंठ में तो केवल भगवान का उच्छिष्ट ग्रहण मात्र करना है, लेकिन वृंदावन भाव में ब्रज में भगवान दूसरे का उच्छिष्ट खा लेते, जिसके कारण बड़े बड़े भक्त जिनकी बड़ी बड़ी बुद्धि है, जो वेदों के ज्ञाता है, वो भी भ्रमित हो जाते हैं। तो नारद जी जानते हैं भगवान तो स्वयं देंगे नहीं, तो माता लक्ष्मी से जाके पूछना पड़ेगा, और लक्ष्मी जी तो स्वयं माता है, वो अपने बालक को कभी ना नहीं कहेगी। तो उसी प्रेम के वश में माता के पास जाके पूछते हैं कि मैया थोड़ा उच्छिष्ट दे दो भगवान। तो माता लक्ष्मी उनको थोड़ा सा भगवान का उच्छिष्ट दे देती, और जैसे ही नारद जी उस भगवत प्रसाद को उच्छिष्ट को प्राप्त कर लेते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि बस नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं, पूरे अष्ट विकार शरीर में उनके दिखाई देते, और ऐसे जाते 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 घूमते घूमते कैलाश तक पहुंच जाते। कैलाश में जाते ही शिवजी देखते हैं, क्या रे आज मेरे रात्रा तो क्या हो गया, मेरे भाई को क्या हो गया कि इतना पागल जैसा हो गया है, इतना मदमस्त हो गया है। तो देखो शिव को पूछते कि ऐसा क्या है, तो बोले कुछ नहीं, आज साक्षात भगवान का प्रसाद प्राप्त हो, उनके उच्छिष्ट विलेपन का आनंद है। बोले तो बोले कैसे भाई हो तुम, बोले मिला तो अकेले अकेले खा लिए, हमें याद भी नहीं किया। बोले कैसे खाया, बोले बोले ऐसे खाया, तो बोले लाओ इधर हाथ तुम्हारा, और हाथ खींच लेते हैं उनका, और हाथ में लगा हुआ थोड़ा सा जो उच्छिष्ट रहता है उसको शिवजी ग्रहण कर लेते, और जैसे ही शिवजी उस महा महाप्रसाद को ग्रहण कर लेते, एक तो भगवत प्रसाद हो गया, उसके पश्चात नारद जी ने उन्हों उसको ले लिया था, तो और वो महा हो गया। उसको ग्रहण करने के पश्चात तो शिवजी तो एकदम भावावेश में आके अपना नृत्य शुरू कर दे। जैसे ही शिव जी का नृत्य शुरू हो जाता है, माता पार्वती वहां पे आती, बोलती क्या है आज, ना तो प्रलय है और ना ही किसी ने इनकी तपस्या भंग किए, आज ये तांडव क्यों करना शुरू करती है। तो आके पूछती है कि ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो बोले मैं क्या बताऊं आपको, आज मुझे महा महाप्रसाद प्राप्त हो गया भगवान। तो बोले ऐसे, तो बोले कैसे पति हो आप, पति का अर्थ है जो पा इति सह, जो रक्षा करता है, जो पालन करता है, और आपका ये कर्तव्य था कि अगर आपको भगवत प्रसाद प्राप्त हुआ है, वो भी महा महा प्रसाद, तो आपको मुझे देना चाहिए था, मैं आपके अर्धांगी। तो रूट के जाके बैठ जाती है तपस्या, और माता पार्वती तपस्या करती है, भगवान जब सामने प्रकट हो जाते तो बोलती है कि भगवान अगर आपके महाप्रसाद से ये दो व्यक्तियों में इतना भाव विभोरता आ सकती है, ये इतने मदमस्त होकर उस आनंद को, आपके प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं तो चाहती हूँ कि ये जो मेरे बच्चे हैं, जो इस भौतिक संसार में अपने कामनाओं के कारण झुझल रहे हैं, इस भौतिक अग्नि में, दावानगल में जल रहे हैं, अपने आप को पका रहे हैं, इनकी मुक्तता के लिए, इनको भी ऐसा ही आनंद प्राप्त करने के लिए आप कुछ करो। ये रहता है माता का हृदय, जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने संतानों के लिए सोचती। और यहां पे जैसे कहा जाता है कि ये भौतिक जगत जो है ये माया के अधीन रहता है, जैसे दुर्गा देवी के अधीन है, माता पार्वती के अधीन है। तो अगर यहां से बाहर निकलना है तो सबसे उत्तम चीज है भगवान के और भगवान के भक्तों के प्रसाद को प्राप्त करना, और उस समय भगवान उनको वरदान दे देते कि खास करके विशेष करके इस कलयुग में जगन्नाथपुरी में मैं केवल खाने की लीला करूंगा, केवल भोजन करूंगा। इसलिए 8 बार वहां पर भगवान को 56 भोग, और भगवान के हाथ कभी सूखते ही नहीं है वहां पर, इतना भोग वहां पर ग्रहण कर ले और वही भोग वही प्रसाद बाहर प्राप्त होता। और आज तक का ये प्रमाण है कि जो कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी जाता है और विशेष करके आनंद बाजार में भगवान के महाप्रसाद को प्राप्त कर लेता है, वो निश्चित रूप से पहले जैसा नहीं रहता, उसके हृदय में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि साक्षात भगवान के उच्छिष्ट वहां पर उसको प्राप्त होता है। और भगवान के भक्तों के भी उच्छिष्ट प्राप्त होते, वहां पे भगवान को भोग लगने के पश्चात तुरंत वो विमला देवी को लगता है और उसके पश्चात वो फिर भोग बाहर आनंद बाजार में आता है। तो भगवान के भक्तों का उच्छिष्ट प्राप्त करने के पश्चात निश्चित रूप से उनके ही गुण हमें आ जाते हैं। इसलिए पहले के दिनों में और आज भी उड़ीसा में हम देखते हैं जो स्त्री पतिव्रता है, जो अपने पति के प्रति आदर और सम्मान रखती है, वो कभी दूसरी थाली में नहीं खाती है। पति जिस थाली में भोजन कर लेता है उसका भोजन होने के पश्चात जो शेष रहता है उसी थाली में वो खुद भी भोजन करता है। ऐसा क्यों कहा जाता है और क्यों किया जाता है? क्योंकि जिस व्यक्ति का उच्चिष्ट आप ग्रहण करते हो उसी के गुण आप में आ जाते हैं और उसी के आदेशानुसार उसी के सूचनाओं के अनुसार आप अपना जीवन व्यतीत करते हो। और गृहस्थाश्रम में अगर सुख और शांति चाहिए तो ये एक उत्तम उपाय है जो आजकल कोई नहीं कर। अरे धीरे धीरे सब कम होते जाए, आप जब होटल में जाके खाओगे तो कहां से होगा, ये अपने घर पे खाएंगे तो हो सकता है ना। हफ्ते में 2-3 बार तो लोग आजकल होटल में जाके खा लेते हैं, रेस्टोरेंट में बैठ के खाते, तो कहां से ये होगा। दूसरे के पत्नियों का झूठा खा लेंगे, क्योंकि जो थाली में परोसा जाता है रेस्टोरेंट में वगैरह वो कौन सी थाली रहती है, हर एक के लिए थोड़ी नई हर बार आती है, वही किसी का खाया हुआ वही आ जाता है। तो दूसरे का झूठा खाने के कारण किस प्रकार की भावना बनेगी। और इसलिए विशेष करके भक्तों को भी कई बार पूछ लेते हैं, रोज रेस्टोरेंट में खाया तो चलता है क्या, नॉनवेज रेस्टोरेंट नहीं है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, वहां से मंगवा के खाए क्या। जो खाओगे वही पाओगे, क्योंकि वहां पे जो बनाने वाला व्यक्ति है वो क्या भक्ति भाव से बनाने वाला तो है नहीं, उसकी भावना तो है कि आपकी जेब खाली करे। तो आप खाओगे तो आपकी भावना भी वैसी हो जाए कि दूसरे की जेब खाली करे। तो इसीलिए सोचना चाहिए, क्योंकि भक्त भुक्त अवशेष, भगवान के भक्तों का अवशेष खाया हुआ जो अन्न है वो ग्रहण करने के पश्चात भक्ति में बहुत व्यक्ति प्रगति करता है। कल हमने चर्चा की जैसे रामानुजाचार्य के बारे में, उनके भुक्त अवशेष को प्राप्त करने के पश्चात मछलियों ने भी अपने दिव्य शरीर को धारण कर लिया था चतुर्भुज रूप, तो उनके चरणों की धूल प्राप्त करने के पश्चात भी एक पिशाच ने राजा की पुत्री का शरीर छोड़ दिया था। यानी एक ब्रह्मभूत था जो एक राजा के कन्या को पकड़ लिया था, तो कई उन्होंने उपाय किए उससे जा ही नहीं रहा था। फिर पूछे क्या करना चाहिए, तो बोले ऐसे ऐसे एक यतिराज है उनको लेके आओ और उनके चरणों की धूल मेरे मस्तक पे लगा दो, मैं ये शरीर का त्याग कर दूंगा। और फिर रामानुजाचार्य आते हैं और उनके चरणों की धूल उस कन्या के मस्तक पे लगाती, वो पिशाच उनके शरीर को छोड़ के चला जाता है। तो पिशाच भी हमसे बेहतर है, क्योंकि वो जानते हैं कि वैष्णव के चरण धूलि का महात्म्य क्या है और हम इसको ग्रांटेड ले लेते हैं और कभी कभी अति कर लेते हैं। जानबूझ के 100 लोगों के सामने जाके किसी के चरणों को हाथ लगाएंगे अपनी तथाकथित नम्रता दिखाने के लिए, अरे धोली लेना है तो वहां जलते हैं, वहां से उठा के ले लो ना, मस्तक पे लगाओ, जरूरत क्या है ये 150 लोगों के सामने जाके दूसरे के पैर को पकड़ने। वो भी ठीक है, लेकिन उसके लिए आपके पास अगर स्वाभाविक नम्रता हो तो वो अत्यंत उत्तम है, नहीं हो तो केवल अपनी महत्ता बढ़ाने के लिए नहीं करना है कि हमारी दिखाऊ नम्रता दिखाने के लिए। और उस चरण धूलि को स्वयं भगवान भी अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं। और एक पुराण में सुंदर कथा आती है कि एक बार द्वारिका में श्रीमन द्वारकाधीश अपने मस्तक को पकड़े बैठे रहते हैं और उसी समय वहां पे देवर्षि नारद पहुंचते। नारद जी देखते हैं कि अरे द्वारकाधीश आज मस्तक पे हाथ लगा के बैठे, बोले ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि इनको मस्तक पे हाथ लगाना पड़े, और सारी महिषियां तो इनकी यहां पे है तो फिर क्यों ये सर पे हाथ लगा के बैठते हैं। पहले के जमाने में व्यक्ति उसी समय अपने सर को हाथ लगा के बैठता था जब उसकी पत्नी उसे छोड़ के जाए या उसकी शरीर त्याग करे कि अभी कैसा होगा क्या होगा करके। बोले इनको क्या हो गया, लेकिन इनके तो 16,108 रानियां तो अभी तक है और फिर ये सर पे हाथ लगा क्योंकि बैठे। तो भगवान से स्वयं जाके पूछते कि भगवान ये क्या है आज। तो बोले नारद जी आज मेरा शिरशूल हो चुका है, यानी मेरा सरदर्द कर रहा है, वेदना हो रही है मेरी मस्तक में। बोले आपके, बोले इसके ऊपर उपाय, अभी स्वयं भगवान जिनका एक अंश धन्वंतरी जो सारे औषधियों का देवता कहा गया है, वे स्वयं सर पे हाथ लगा के बैठे हैं और उसके लिए उपाय देवर्षि नारद पूछ रहे हैं क्या। भगवान बताते कि इस मस्तक शूल से अगर मुझे छुटकारा पाना है तो आप जाके मेरे किसी भक्त के चरणों की धूल लेके आ और मेरे मस्तक पे लगा, उससे कम हो जाता। तो देवर्षि नारद घूमना शुरू कर दिए। सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास, बोले यही सबसे बड़े भगत है। तो ब्रह्मा जी बोले क्या मूर्ख हो क्या, मेरे चरणों की धूल उनके मस्तक पे डालूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मैं कहां जाऊंगा। फिर गए शिव जी के पास, घूमते घूमते सारे देवी देवता हो गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए और अंत में आके जमुना जी के तट पे बैठ गए। और उसी समय कुछ गोपियां वहां से गुजर रही थी, जा रही थी, तो उन्होंने देखा, बोले देवर्षि नारद आज इतने दुखी भाव में बैठे, क्योंकि देवर्षि नारद तो नारद मुनि भजाए बिना राधिका रमण नाम है, श्रीमती राधिका रानी और राधिका रमन जो है उनके गुणों का गुणगान करते हुए अपने मस्ती में घूमने वाले, अपने आनंद में, निज आनंद में घूमने वाले नारद जी आज दुखी क्यों दिख रहे हैं। तो जाके पूछती है गोपियां कि हे देवर्षि क्या हुआ। तो देवर्षि बताते कुछ नहीं, बोले भगवान श्री कृष्ण के मस्तक में शूल है और उनको राहत पाने के लिए, उससे मुक्तता पाने के लिए किसी भक्तों के चरणों के धूल की आवश्यकता। बस इतना ही सुनते ही एक गोपी अपना पल्लू निकाल देती है और बिछा देती है, सबको बोलती है झाड़ो अपने पैर इसमें। नारद जी बोलती है अरे तुम क्या कर रही हो, समझ में आ रहा है आपके। बोले क्या हुआ, बोले ये मस्तक उनके धूल पे उनके सर पे चली जाएगी तो आपको करोड़ों जन्मों तक नरक में जाना पड़ेगा। तो गोपियां बोलती है क्या अरे हमारे काना को एक क्षण के लिए भी राहत मिल जाए उस मस्तक शूल से, उस शिरो वेदना से, तो बोले करोड़ों क्या, करोड़ों करोड़ अरबों जन्मों तक हम नरक में जाने के लिए तैयार। नारद जी पोटली बांध के भगवान के पास लेके आते, भगवान अपने माथे पे लगाते और शिरो वेदना निकल जाती। तो भगवान कहते हैं अरे भक्ति के सूत्रों की रचना करने वाले मेरे भक्त, तेरे चरणों की धूल भी मेरे मस्तक पे चल सकती थी तो क्यों दुनिया भर घूम रहा था। लेकिन नारद जी कहते हैं कि भगवान मैं तो अपने आप को आपका भक्त मानता ही नहीं, अगर भक्त मानता तो उसी समय आपके मस्तक पे मेरी धूल लगा देता, लेकिन आपके भक्त तो वे है जो अरबों जन्मों से नरक में जाने के लिए तैयार है केवल एक क्षण का आनंद आपको देने। तो सोचिए फिर, ऐसे भक्तों के चरणों की धूल अगर भगवान मस्तक पे नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? और ऐसे भक्तों के चरणों की धूल का कोई अवमान करता है या ऐसे भक्तों के चरणों के प्रति कोई अपराध कर लेता है तो भगवान क्या उसे छोड़ेंगे? हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमस स्थाने अपराधे नाही परित्राणे। जब भगवान के भक्तों के चरणों के प्रति कोई अपराध कर लेता है तो चाहे फिर वो कोई भी हो, एक भक्ति सार करके अलवार थे, अलवार शब्द का अर्थ है कि जिनका हृदय भगवत प्रेम से आप्लवित हो गया है, भगवान की भक्ति की बाढ़ जिनके हृदय में आई हुई है, ऐसे व्यक्ति को अलवार कहा जाता है। तो जे भक्ति सार अलवार जो थे वो इतने महान भक्त थे, रंगनाथ क्षेत्र में वे एक जगह पे बैठ के अपने आप को एक कार्य में लगा रहते थे, उनका फटा हुआ जो कंबल रहता था उसको सीते रहते थे। उस जमाने में तो इतना सुविधाएं थी नहीं उनके पास, तो क्या करते थे, नारियल का एक तिनका लेके, नारियल की झाड़ी का जो क्या रहते हो क्या बोलते उसको, वही छोटी सी लकड़ी लेके उसके पीछे धागा बांध के अपने कंबल को सी रहे। और प्रतिदिन की तरह सायं संध्या के समय शिवजी अपने सारे पार्षदों के साथ वहां पे भ्रमण कर रहे थे, और कहा जाता है कि उस समय शिव पार्वती की छाया जिसके ऊपर गिर जाती है वो व्यक्ति बहुत ही ऐश्वर्य संपन्न हो जाता है। तो वे वहां से जा रहे थे और जाते जाते उन्होंने नीचे देखा कि एक व्यक्ति बैठा है जो इनकी छाया से बचना चाह रहा है। वैसे हरे को छाया तो दिखाई नहीं देती है, तो पार्वती को डाउट है कि ये कोई तो व्यक्ति है कि जिसको हमारी छाया दिखाई दे रहे और जिसके कारण ये उससे बच रहा है, यानी ये कोई तो विशेष व्यक्ति है, जाना चाहिए देखना चाहिए। तो दोनों पहुंच गए नीचे और बोले भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने ऊपर भी मुड़ के नहीं देखा, वो अपनी सेवा में रती थे। तो पार्वती ने फिर से बोला शिवजी को, पूछो उसको कि क्या चाहिए। तो शिवजी ने एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीन बार पूछा, तो कुछ बोले नहीं। तो पार्वती बोली कि आप खुद होके उनको बोलो कि आप ब्रह्मा का पूरा ऐश्वर्य उनको दे देंगे। फिर भी उन्होंने ऊपर नहीं देखा मस्तक कर। फिर पार्वती को और गुस्सा आ गया, बोले मेरे पति के समान ऐश्वर्य और सारे गुण मैं तुमको देना चाहती हूं। विशेष करके कोई स्त्री नहीं चाहती कि अपने पति जैसा कोई दूसरा व्यक्ति हो, आजकल तो अलग बात है, लेकिन कोई सती साध्वी तो नहीं चाहेगी। माता पार्वती उसके लिए तैयार हो गई, फिर भी शिवजी वो भक्ति सार ऊपर मुंह करके देख ही नहीं रहे, बहुत गुस्सा आ गया। पार्वती बोली कि आप इसको अभी के अभी यहां पे शिक्षा करो, दंड दे दो यहां पे इसको। शिवजी बोले क्या कर रही हो, तुम्हारे कहने से किसी और व्यक्ति को भी दंड प्राप्त हो गया था, चित्रकेतु को तुमने दंड कर दिया था, वृत्रासुर बन गया इसका, अभी इनका क्या करना चाहती? तो जैसे शास्त्रों में वर्णन है बाल हट्ट, स्त्री हट्ट और राज हट्ट, ये पूरे ही करने पड़ते हैं, इससे कोई चुका नहीं है, चाहे देवराज इंद्र हो या साक्षात द्वारकाधीश हो, स्त्री हट्ट के पूरा करना ही पड़ा। तो शिवजी बोले ठीक है, अभी तुम्हारी इच्छा है तो बोले क्या करे, बोले इसको अभी जला के भस्म करो। तो शिवजी ने तुरंत अपनी तीसरी आंख खोल दी। जैसे उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी, प्रचंड प्रलय अग्नि वहां से बाहर निकली। और जैसी वो प्रलय अग्नि भक्ति साहब के पास आने लगी, तो उन्होंने क्या किया, अपने अंगूठे को जमीन में दबा दिया। जैसी जमीन में दबा दिया, विरजा वहां उत्पन्न हो, और देखते ही इतना पानी बढ़ गया कि वो प्रलय अग्नि तो बुझ गई और सारा मंदिर पानी में डूब गया। और देखा उस पानी के ऊपर ये बैठ के अपना वही काम कर रहे। नहीं, एक्चुअली इसके पहले क्या हुआ था, ओ पार्वती को इससे ज्यादा गुस्सा क्यों आया, क्योंकि जो पार्वती, अरे तुम कुछ तो मांगो बोलने के पश्चात उन्होंने शिव जी को बोला कि मुझे मुक्ति दे दो। तो बोले वो तो मैं नहीं दे सकता, वो मेरा काम नहीं है, वो विष्णु का काम है। तो बोले पूछते क्यों हो तुम कि जो चाहे वो मांगो, और जब मांगता हो तो दे नहीं सकते हो, देने की क्षमता नहीं है तो मांगने के लिए क्यों कहते हो। तो बोले ये नहीं दे सकते हो तो कम से कम एक काम करो, बोले ये धागा मेरा बार बार ये जो तिनका है इससे निकल जाता है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट करो कि ये इसमें ही लगा रहे। तो पार्वती को गुस्सा आता, बोलती इतनी क्षुद्र चीज तुम मेरे पति से मांग रहे हो कि ये तिनके का धागा इसमें लगा रहे। बोले अभी क्या, अभी इसको आप दंड दे दो। और फिर वो प्रलय अग्नि वहां पर निकालते, और देखते कि इनके चरणों से फिर वो पानी बाहर आने लगा, सारा शांत हो गया। और फिर पार्वती माता को समझ में आया कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि अनन्य असाधारण व्यक्ति है जिसने भगवान के चरणों का आश्रय लिया। देयमानम न गृणन्ति मत सेवया बिना, भगवान के भक्त ऐसे है कि जिनको इन मुक्तियां भगवान स्वयं देना भी चाहिए तो नहीं होती है, बल्कि भगवान की सेवा चाहिए होती है। और ऐसे सेवा में निरत व्यक्ति को बोले हमने परेशान किया। और उस समय फिर शिवजी उनको नाम दे देते कि आपका नाम भक्ति सार रहेगा, क्योंकि भक्ति ही जीवन का सार है, और ये उन्होंने दिखाया था उनके आचरण। तो सोचो ऐसे भक्तों के चरण धूल को अगर भगवान अपने मस्तक पे धारण करते हैं तो फिर दूसरे लोग क्यों नहीं करेंगे। और भगवान अपने आचरण से यहां पे सिखा रहे, बल्कि मैं स्वयं, भागवत प्रमाण है उसके लिए कि भगवान स्वयं ब्राह्मणों के चरणों की धूल अपने मस्तक पे धारण कर लेते हैं। किसी कुछ टीका टिप्पणी या कोई प्रश्न हो। What I have seen in ISKCON, not in other sampradayas, because our people, they are themselves doubtful that whether we are that much qualified, by giving dust they will get delivered or I will get his karma and suffer for them. Because generally if someone touch your feet, he surrenders to you, means he surrenders to you with all his karma. And if you are capable to burn out that karma, then you should accept that. Otherwise, better not to let them touch their feet. But for the grihasthas, it's what's the Yajnavalkya Smriti and Parashara Smriti, both it is said that grihastha, they should take the dust of lotus feet of saintly persons. Because that is what saves them, nothing else. Prabhupada did allow. Yeah, they can touch my feet. Because the person who knows, he only allows that, okay, he can able to deliver them. And there are, out of sheer humility also, sometimes they don't allow you to directly touch their feet. Especially the great saintly persons like Babaji's and sannyasis, they never allow women to touch their feet. But to take dust, you can take dust from the ground. Now, when you walk away, you can take dust from there. Not necessary that you have to touch their feet. So sometimes out of sheer humility they do, out of sometimes with a proper understandings they do, because they may feel that they are not that qualified that they can deliver this person, or they are not able to take his karma, so better not to do that. Hare Krishna. Granthar Ashram Bhagavatam ki Srila Prabhupada ki.